इसलिए फरमाया, यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर और खूब देखने वाला है। इन्नहू काना बिइबादिही खबीरन बसीरा। क्या खूबसूरती है, अल्लाह को पता है किसकी जेब में कितने हैं, किसके पर्स में कितने हैं, किसके बैंक में कितने हैं, किसके क्रेडिट में कितने हैं। अल्लाह की नजर एक एक पैनी पैसे पे है। अब यहां तक बात हुई अल्लाह की, माँ बाप की, रिश्तेदारों, गरीबों और मिसकीनों की, अब औलाद की बात। क्या वला तक्तुलू औलादकुम खश्यत इमला, और मुफलसी के खौफ से अपनी औलाद को ना मार डालो, इनको और तुमको हम ही रोजी देते हैं, यकीनन इनका कत्ल करना कबीरा गुना है। पारा 14 और पारा 15 के रब्त में एक चीज कत्ले औलाद है। पिछले पारे में हमने सूरत नाहल में देखा बेटियों को जिंदा दरगोर करने की बात थी, तो अरबों में 3 वजूहात पे औलादों को जो या बेटियों को स्पेशली मारते थे, उसमें एक उधर आ गई, दूसरी आपके सामने आ रही है इस बारे में। क्या कि औलाद खाएगी कहाँ से, 2 बच्चे खुशहाल घराना इस स्लोगन को फाड़ के फेंक दीजिए। ये खुशहाल घराना नहीं है, ये मुफलिस घराना है। ये बर्गर फैमिली तो है, ऊपर नीचे है, लेकिन ना भाई का भाई है ना बहन की बहन है। याद रखिए, बेहतरीन तोहफा जो माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो भाई या बहन है, सिबलिंग्स। अकेला क्या होता है, लेकिन क्या करें, लाइफस्टाइल अच्छा रहे, कमाते रहें, खाते रहें, और वो ब्लू और पिंक के कॉन्सेप्ट और मैचिंग सॉक्स और उनके जूते और उनकी इतनी लंबी कहानियां हमने घड़ ली कि हम कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते तीसरा बच्चा। माफ कीजिए, आप तो 2 बच्चे भी नहीं अफोर्ड कर सकते। क्या 2 बच्चों को कोई माँ बाप खिला सकते हैं अगर अल्लाह ना दे तो? तो ये वजह बताकर इधर कह दिया कि तुम औलाद को मुफलसी के खौफ से ना मार डालो, इनको और तुमको हम ही रोजी देते हैं। और याद रखो, इन्ना कत्लहुम काना खित्अन कबीरा, इनका कत्ल करना कबीरा गुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, सिराज मुनीरा की रोशनी की वजह से आज उम्मत मुस्लिमा में बेटियों का कत्ल तो नहीं है, आज बच्चों को कोई कत्ल तो नहीं करता, लेकिन एक चीज तो मौजूद है, और वो क्या है सोचिएगा, एबॉर्शन। ये आयतें एबॉर्शन से भी मुतल्लिक हैं। क्यों, आइए जरा अगली आयत को पढ़िए। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, खबरदार जिना के करीब भी ना भटकना क्योंकि वो बड़ी बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। कत्ले औलाद के फौरन बाद जिना की बात है। लिखिए, जब से ऐसे तरीके इजाद हुए कि अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर लो और बच्चा भी ना पैदा हो, तब से एबॉर्शन आम हुआ। और फिर आप देखेंगे कि इन सारी चीजों में अगर आप महसूस करेंगे तो क्या समझ आएगा, इससे समझ आएगा कि एक गुना के बाद दूसरा गुना, दूसरे के बाद तीसरा गुना। ये ट्रेन के डब्बों की तरह बोगियों पे बोगियां खड़ी हो जाती हैं। जब आप एक काम गलत करते हैं तो दूसरा खुद ब खुद होने लगता है। अब मुझे बताइए, इतनी प्यारी तालीमात अल्लाह ने दी है, कोई और शरीयत है ऐसी जो ये दे सके? आज मुझे तो इन बातों को पढ़ते पढ़ाते हुए दोबारा इस्लाम पे प्यार आ रहा है। इस्लाम की कोई एक चीज ऐसी नहीं जिस पे आप शर्मिंदा हो। किसी ओपन चैनल पे, किसी बड़े प्लेटफॉर्म, यूएन हो, दुनिया में एक बड़ा इदारा माना जाता है, वॉशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस, दुनिया के किसी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बगैर किसी रिजेंटमेंट के, बगैर किसी फिक्र के कि हाय कोई ऐसी बात ना आ जाए कि इनको बुरी लगे, कुरान पढ़ के सुनाए, खुले दिल से कुरान का तर्जमा गैर मुस्लिमों को दीजिए, नहीं ये काट दूं, ये इनको बुरा ना लगे, ये ना, नथिंग। कुरान इतना खूबसूरत, इंसान दोस्त है। आप सिर्फ ये जो चंद आयतें इनको पढ़ के अलग से निकाल कर किसी भी दुनिया के इंसान से, जो वाकई इंसान हो, उसके शेयर करके पूछे बताओ ये इस्लाम कैसा दीन है। आज हमारी यूथ के लिए ये काम करना है आपने, और जो यंग लोग सुनते हैं इन बातों को, उनके करने का ये काम है। कुरान के ऐसे ऐसे नुक्ते, ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल कर जो ह्यूमैनिटी की बेस, जो ह्यूमैनिटी को टच करते हैं, उसको कॉमन करें। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि जी इस्लाम और मुसलमान जो ये इनह्यूमन है, नऊज़ुबिल्लाह, ये जी बर्बेरिक सजाएं इनकी, ये तो इंसानों के दुश्मन है, इस्लाम इस इंसान दोस्त। वला तक्तुरुल नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक, और किसी जान को जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम करार दिया हरगिज़ नाहक कत्ल ना करना, और जो शख्स मजलूम होने की सूरत में मार डाला जाए, हमने इसके वारिस को ताकत दे रखी है, बस इसे चाहिए कि मार डालने में ज्यादती न करे, बेशक वो मदद किया गया है। और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ सिवाय इसके वो तरीका जो बहुत ही बेहतर हो, यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत को पहुंच जाए और वादे पूरे करो, क्योंकि कौलो इकरार की बास पुरस होने वाली है। और जब नापने लगो तो भरपूर तरीके से पैमाना भर के नापो और सीधी तराजू से तोला करो। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यही है बेहतर और इंजाम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और बातों में वला तकफु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात की तुम्हें खबर ही ना हो इसके पीछे मत पड़ो, तजस्सुस ना करो, डोंट बी स्पाई, क्योंकि कान और आंख और दिल इनमें से हर एक से पूछ हिच की जाने वाली। जी, ये जो आपके तीन अज़ा हैं ना, ये रिसेप्टर्स हैं, कल इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी। जैसे कोई किसी जगह रिकॉर्डर लगा दे और बाद में उस रिकॉर्डर को खोले और उसमें एक एक चीज़ जो रिकॉर्ड है उसको पूछे, तो ये आपके मेरे रिकॉर्डर्स हैं। कल जब इनको खोला जाएगा और इसके अंदर के गंद को बाहर निकाला जाएगा ना, तो लग पता जाएगा क्या कुछ करते थे इन चीज़ों से। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन में अकड़ कर ना चल, के ना तू जमीन को फाड़ सकता और ना लंबाई में पहाड़ों को पहुंच सकता है। इन सब कामों की बुराई तेरे रब के नजदीक सख्त नापसंदीदा है। यहाँ पे ये खूबसूरत पैगाम पूरा हुआ। आप देख रहे हैं कि इन सारी आयात में क्या कुछ है। तदब्बर करते हैं आयत नंबर 18 से 38 पे। आयात पे अमल, अपने वालदैन को कोई तोहफा दीजिए और कोई ऐसी बात कीजिए कि वो खुश हो जाए, जो चीज़ आपको बुराई पर उकसाती हो इससे मुहतात हो जाए। जिन बातों का आपको इल्म ना हो इनके बारे में कहने की आदत डालिए कि मैं नहीं जानती, आई डोंट नो, लादरी, क्या होगा, छोटे हो जाएंगे, नहीं छोटे नहीं बल्कि बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो छोटा बनता अल्लाह उसको बड़ा बनाता है। कुरान से रहनुमाई, सिर्फ आखिरत की रग़बत रखना काफ़ी नहीं बल्कि इसके साथ नेक अमल भी ज़रूरी है। अल्लाह दुनिया हर एक को देता है, चाहे मोहब्बत करता हो या ना, कभी आजमाइश के लिए कभी ढील के लिए। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इन आज़ा कान आँख और दिल के बारे में बास पुरस होगी, लिहाजा इनका इस्तेमाल अल्लाह की इताअत में कीजिए। गौर व फिक्र के गोशे, अपने वालदेन की मोहब्बत और शफकत को याद रखिए और इनके हक में मेहरबानी और मोहब्बत का जज्बा बढ़ाइए। जिसने अपना माल जरूरतों से ज्यादा शहवात को पूरा करने में खर्च किया उसने फजूल खर्ची की। बुढ़ापे में वालदेन कमजोरी की हालत में हुस्ने सलूक के ज्यादा मुस्तहिक होते हैं, उनके साथ नरमी का मामला करें। जिना बेहयाई है, ये अक़ल शरीयत और फितरत इंसानी के नज़दीक बहुत बड़ी बुराई है। इस्लाम ने नस्ब की हिफाजत का जिम्मा लिया इसीलिए जिना मना, इस्लाम ने अक़ल की हिफाजत का जिम्मा लिया इसलिए शराब मना, अल्लाह ने जान की हिफाजत का जिम्मा लिया इसलिए किसी की जान लेना मना, अल्लाह सारी हिफाजतों की तौफीक दे, माल की हिफाजत का जिम्मा लिया इसलिए चोरी की सजा। आगे देखिए आयत नंबर 39 से, ज़ालिका मिम्मा ओहिया इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ये उन सारी वही की चीज़ों में से है जो तेरी जानिब तेरे रब ने हिकमत से उतारी है। तो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाना कि मलामत खुर्दा और आंधा दरगाह होकर दोजख में डाल दिया जाएगा। क्या बेटों के लिए तो तुम्हारे रब ने तुम्हें छांट लिया और खुद अपने लिए फरिश्तों को लड़कियाँ बना लिया, बेशक तुम बहुत बड़ा बोल बोल रहे हो। एक और बदअकीदगी थी कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, उस पे बात कर दी। वलकद सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल कुरआन, नोट किया आपने कितनी दफ़ा लफ्ज़ कुरान आ चुका है अभी तक और आगे भी आएगा। हमने इस कुरान में हर हर तरह बयान फरमा दिया कि लोग समझ जाएं, लेकिन इससे इन्हें तो नफरत ही बढ़ती। और कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद भी होते जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो ज़रूर वो अब तक मालिक अर्श की जानिब राह ढूंढ निकालते। जो कुछ ये कहते हैं इससे वो पाक और बाला तर बहुत दूर बहुत बुलंद है। सातों आसमान और जमीन और जो भी इनमें है इसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो इसे पाकीजगी और तारीफ के साथ याद न करती हो। हाँ ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह समझ नहीं सकते, वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। वाइजा करा तल कुरान, एक आदायत के बाद दोबारा लफ्ज़ कुरान आ गया। तू जब कुरान पढ़ता है, हम तेरे और इन लोगों के दरमियान जो आखिर पर यकीन नहीं रखते एक पोशीदा हिजाब डाल देते हैं, बैरियर, वेव लेंथ ही नहीं मिलती, और इसी तरह की बातें। और इनके दिलों पर अपने पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे समझें, और इनके कानों में बोझ। और जब आप सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र करते हैं इसकी तौहीद के साथ इस कुरान में, तो वो रू गर्दानी करते, पीठ फेर कर भाग खड़े होते हैं। यानी एक अल्लाह का जिक्र उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं साथ हमारे बुजुर्गों की भी बातें करो, हमारे बड़ों की भी बातें करो, इसकी करने वाले की, उसकी पकड़ने वाले की, मुश्किल कुशा की, दस्तगीर की, इनकी भी करो। अल्लाह ताला कहते हैं नहनु आलमु बिमा यस्तमे ओ नबी। अब जासूसी करने के लिए नबी के पास आते थे, उसी का तذکرہ है। जिस गरज से ये लोग इसे सुनते हैं, इनकी नियतों से हम खूब आगाह हैं। देखिए आपको मुझे बिल्कुल हक नहीं है ये कहने का कि आप किस नियत से पढ़ा रही हैं और मैं आपसे कहूँ आप मुझे पता है आप किस नियत से सुन रही हैं। अगर मैं ऐसा जुमला बोलूंगी तो मैं अपनी हद से बड़ी भी बात करूंगी। सिर्फ अल्लाह जानता है कि कौन किस नियत से क्या बात कर रहा है। इसीलिए अल्लाह तआला कह रहे हैं ऐ नबी आप इनसे बेन्याज हो जाइए। कैसे? जब ये आपकी तरफ कान लगाए हुए होते हैं तब भी, और जब मशवरा करते हैं तब भी, जबकि ये जालिम कहते हैं कि तुम इसकी ताबेदारी में लगे हुए हो जिन पर जादू कर दिया गया है। देखें तो सही आपके लिए क्या क्या मिसालें बयान करते हैं, बस वो बहक रहे हैं। अब तो राह पाना इनके बस में ही नहीं रहा। क्या खूबसूरत आयत पर रुख हुआ, आयत 48, जिससे क्या पता चलता है कि इंसान कुरान को सुनते वक्त खास तौर पे इस चीज की दुआ करके बैठे कि अल्लाह सुन सुन के सुन ना हो जाओ। दूसरी दुआ मांगे, अल्लाह ये हिदायत का सुनना बना दे। अल्लाह ताला सूरत मुरसलात में कहते हैं इस बात के बाद भी नहीं मानोगे तो कब मानोगे। और मैं अक्सर कहती हूँ जो इसको कुरान पढ़ के हिदायत ना मिली उसको फिर कब मिलनी है? क्या गाने सुन के मिलेगी और फिल्में देख के मिलेगी और इस तरह मुख्तलिफ फिक्शन चीज़ों को और गलत मजाहब की चीज़ों को पढ़कर हिदायत मिलेगी? तो अपने लिए दुआ करें मैं भी और आप भी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर आगे उनके अकायद में एक अकीदा, मरने के बाद जीना, इसके बारे में वो डाउटफुल थे, उसका इजहार है। वकाल वजाकन्ना, उन्होंने कहा जब हम हड्डियां और मट्टी होकर रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके दोबारा उठा खड़े कर दिए जाएंगे? जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई और ऐसी खिलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फिर वो ये पूछेंगे कि कौन है जो हमें दोबारा जिंदगी लौटाए? जवाब दें कि वही अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया। इस पर वो अपने सर हिला हिला कर आपसे दरियाफ्त करेंगे कि अच्छा ये है कब? यानी मुनकर थे, कियामत के इनकारी थे, डाउट्स थे दिलों में, इसीलिए पूछ रहे हैं। कहा तो आप जवाब दे दें कि क्या अजब कि वो साथ करीब ही आन लगी हो। आज से 1400 साल प्लस वक्त पहले कहा कि कियामत करीब हो, तो आज कियामत और कितनी ज्यादा करीब हो गई होगी, सोचिएगा। होगा क्या? यौम यदुकुम फतस्तजीबू नबी हमदीही, जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा कि तुम इसकी तारीफें करते हुए तामील इरशाद करोगे और गुमान करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत ही थोड़ा है। 2-3 सेकंड गौर करें इस पे, क्या बनेगा उस दिन जब हमें ये एहसास होगा कि हम इस दुनिया में बहुत थोड़ा वक्त रहे और गफलत से रहे। अल्लाह हमें इस छोटी सी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारने वाला बना दे। फिर आपस में जो ताल्लुकात की खराबी होती है उसकी वजह में से एक बहुत बड़ी वजह, इस आयत को तो दिल पे लिखिएगा, इंसानों का इंसानों में रहना और दिल खट्टे होना, किसी की बात अच्छी ना लगना, बुरी लगना, इसकी बुनियादी चीज क्या है? وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बड़ी ही अच्छी बात मुंह से निकाला करें, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। पहले तो लफ्ज देखिए, इबादी, मेरे बंदे, कितना प्यार अल्लाह को अपने बंदों से। यहाँ कोई तहज्जुद गुजारों की बातें नहीं हो रही, या अंबिया कराम का तذکرہ नहीं है, आम बंदे, मीडियोकर्स, खलत अमलन सालेगन वाखर सही वाले बंदे। और अल्लाह करे इन्हें कहा करो, सोच के बोलो। इस पे दो तीन मुहावरे मेरे दिमाग में आ रहे हैं, पहले सोचो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, 100 बार सोचो एक बार बोलो, और फिर अगली बात। इससे पता चलता है कि शैतान का अटमोस्ट गोल क्या है, बंदों के बीच में गलत फहमियां पैदा हो। कम बोलेंगे कम गलतियां होंगी, कम मौके मिलेंगे दूसरों को आपकी बातों को नोट करने के। ज्यादा बोलेंगे ज्यादा गलतियों की उम्मीद है तो ज्यादा पकड़ होगी। आज से जुबान को ऐसे पकड़े, अबू बकर सिद्दीक ने एक मौके पर ऐसे पकड़ा था, पास से उमर गुजरे, कहा या अबू बकर, वहां फालता ये क्या कर रहे हैं। कहने लगे ये बड़ी तेज घाटी है, इसको अपने काबू में कर रहा हूँ, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। और अबू बकर सिद्दीक का अगर ये मामला, तो मेरा आपका क्या होगा। हर बात में बोलना, हर बात आगे कर देना, शैतान फसाद डालता है। तो सोच के बात करें, बहुत अहम आयत है। बिलीव मी, इंसानी ताल्लुकात की अक्सर खराबियां दूर हो जाएं अगर हम इस आयत पर अमल कर लें। सब कहने के बाद अब आगे, रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुमसे बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा जानने वाला है। वो अगर चाहे तो तुम पर रहम कर दे, या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। हमने आपको इनका जिम्मेदार ठहरा कर नहीं भेजा। आसमान और जमीन में जो भी है आपका रब सब बखूबी जानता है। हमने बाज पैगम्बरों को बाज पर बेहतरी और बरतरी दी है, और दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर हमने अता फरमाई। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम मबूद समझ रहे हो इन्हें पुकारो, लेकिन ना तो वो तुमसे किसी तकलीफ को दूर कर सकते हैं और ना बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं खुद वो अपने रब के तकर्रुब की जुस्तजू में रहते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा नजदीक हो जाए। वो खुद इसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और इसके अजाब से खौफजदा रहते हैं। फरिश्तों की तरफ इशारा, बात भी यही है कि तेरे रब का अजाब डरने की ही चीज है। वाई मिन करिया, जितनी भी बस्तियां हैं हम क्यामत के दिन से पहले पहले या तो इन्हें हलाक कर देने वाले हैं या सख्त तर सजा देने वाले हैं। ये किताब में लिखा जा चुका है। क्या पता चला? सोच के जिंदगी के सफर से गुजरी, तदब्बुर और अमल। आयत 39 से ऑनवर्ड अपनी जुबान को अच्छी बात कहने का आदि बनाइए। अल्लाह तला से मोहब्बत, उम्मीद और इसी से डरना, ये तीनों अमाल हर खैर की बुनियाद है। बुराई का भड़ जाना तबाही का पेश खैमा है। गौर व फिक्र की बात है, जब भी जिना और सूद जैसी मुहलक बीमारियां किसी बस्ती में जाहिर होती हैं तो अल्लाह तआला इन्हें हलाक कर देता है। इब्ने मसूद का कौल है। शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालना चाहता है, लिहाजा आपस में नरम रवैया रखिए और हुस्ने सलूक से पेश आए। जिसे अपनी जुबान पर काबू है इसके तमाम मामला तो उसके इख्तियार में रहते हैं। कहते हैं ना, जुबान से निकल गई फिर हाथ नहीं आएगी वापस। सोच के बोला करें। खौफ और उम्मीद के बगैर इबादत पूरी नहीं होती। खौफ की वजह से बंदा मना करदा चीजों से बाज रहता है, और उम्मीद की वजह से नेकियों में कसरत करता है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। आगे चलते हैं, आयत नंबर 59। वमा मनाना नुरसिल बी आयात, एक और बहुत मुश्किल थी उस दौर में, वो क्या थे, मुतालबे करते थे मोजजात के। अब यहाँ से अगला हिस्सा जो इसमें उनके मोजजात के मुतालबात के जवाब में क्या बातें आईं। हमें निशानात यानी मोजजात के नाजिल करने से रोक सिर्फ इसी की है कि अगले लोग इन्हें झुटला चुके हैं। हमने समूदियों को बतौर बसीरत के ऊँटनी दी, लेकिन उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम तो लोगों को धमकाने के लिए ही निशानी भेजते हैं। और याद करो, जबकि हमने आपसे फरमा दिया कि आपके रब ने लोगों को घेर लिया है, जो रोया यानी आईनी रोयत ये वाकया मेराज की तरफ इशारा है। हमने आपको दिखा दी थी, वो लोगों के लिए साफ आजमाइश की थी, और इसी तरह वो दरख्त भी जिससे कुरान में इजहार नफरत किया गया, हम इन्हें डरा रहे हैं, लेकिन ये इन्हें और बड़ी सरकशी में बढ़ा रहा है। क्या पता चला अल्लाह के नबी के वाकया मेराज पे जो रिएक्शन हुआ था उसका इधर जिक्र है। अब आगे यहाँ से आदम और इबलीस का किस्सा 9 दफ़े पूरे कुरान में, और हर जगह डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरह से। आइए देखते हैं कि यहाँ इस किस्से में क्या चीज़ हाईलाइटेड है। वह इस कुलना लिल मलाइकत इस्जुदू ली आदम, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इबलीस के सिवा सबने किया। इसने कहा, क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मट्टी से पैदा किया है? अच्छा देख ले, इसे तूने मुझ पर बुजुर्गी तो दी है, लेकिन अगर मुझे भी क्यामत तक तूने ढील दी, तो मैं इसके औलाद को सिवाय थोड़े लोगों के अपने बस में कर लूंगा। इरशाद हुआ, जा इनमें से जो भी तेरा ताबेदार हो जाए, तो तुम सब की सजा जहन्नम है, जो पूरा पूरा बदला है। जरा से इसमें कुछ लफ्ज हाईलाइट कर लें, बाद में बात करते हैं इन पे। और वो क्या था? इनकी औलादों में से हिस्सा ले ले। चलिए ये भी हो गया। आगे देखिए, वस्तफ़ज़िज़ मनिस्तता मिन्हुम, इनमें से तो जिसे भी अपनी आवाज़ से बहका सके, यानी हर खिलाफे हक आवाज़ इससे मुराद है, बहका ले, और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ले, यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स बना ले औलादों को गुमराह करने के, और इनके माल और औलाद में से अपना हिस्सा भी लगा दे, यानी माल और औलादें शैतान के रस्तों में खपने लगे, और इन्हें झूठे वादे दे ले। इनसे जितने भी वादे शैतान के होते हैं, सब के सब सरासर फरेब है। ये मुस्तकिल तीसरा पारा है, 14, 15 और 13 पारा, जिसमें शैतान के वादों को झूठा करार दिया गया। 13 पारे में तो आपने देखा, खुद ही कह रहा है कि मेरे वादे झूठे थे, तकरीरें करता है। आज यहां भी देख लीजिए, सब फरेब है, झूठ है। अच्छा, शैतान के इतने बड़े प्लान्स हैं कि ये तो पैदा होते बच्चे के पीछे लग जाते हैं और कचोके लगा के उसको रुलाते हैं और कब्र में जाने तक उसको बहकाता है। तो अब क्या करो भाई, कैसे बचो? तो बड़ा प्यारा नुस्खा, इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और बस नहीं, तेरा रब ही कारसाजी करने के लिए काफी है। क्या खूबसूरत बात है। इबलीस की दुश्मनी Day 1 से साबित हुई आदम के साथ, और दुनिया में आते बच्चे को Day 1 पे शैतान बहकाता है। ये जो बच्चा रोता है ना, साइंटिफिकली तो इसकी एक साफ रीजन है ना, कि अम्बेरिकल कॉर्ड कटती है तो उसके तकलीफ से बच्चा रोता है, और बच्चे के जिंदा होने की भी दलील है, इसी आवाज में तो जिंदगी छुपी हुई है। इस्तेहलाल, बच्चे के पैदा होते जो आवाज आती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं अरब लोग। लेकिन स्पिरिचुअली लीगली क्या होता है? इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में हदीस में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसकी रिब में आके ऐसे उंगली खबोता है और उस डर से बच्चा रोता है। ये इश्तियारा है कि दुनिया में आए हो, अब मेरे चुंगल से तुम आजाद नहीं हो सकते। अभी इन आयतों को पढ़ा और अपने पारे के थीम पे भी बात करेंगे। इबलीस ने आदम की नस्लों को, उसकी औलाद को बहकाने के लिए हर किस्म की प्लानिंग कर ली। सवाल ये कि आपने मैंने अपनी नस्लों को अल्लाह से जोड़ने के लिए, इस्लाम से, दीन से करीब करने के लिए क्या किया? देखिए, हर माँ ख्वाहिश करती है कि उसका बच्चा और बच्ची उससे अच्छा हो, बाप भी यही चाहता है। ये अलग बात है कि कुछ कहते नहीं, अल्लाह हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा रिस्क देना, माल देना, दौलत देना, पढ़ाना। कई पेरेंट्स खुद नहीं पढ़े होते तो बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं। दीन के मामले में क्या, क्या हमने अपनी औलादों के दीन की फिक्र ऐसे ही की जैसे उनके दुनियावी तालीम की? वो कच्ची पक्की पहली दूसरी तीसरी का बच्चा स्कूल ना जाए तो माँ परेशान, उस बच्चे के इम्तिहान ना हो जाए तो माँ की रातों की नींद उड़ जाए, बच्चे पढ़ते नहीं कह कह के माए खप खप के सर के बाल सफेद कर लेती हैं, दीन किधर है? आप कैसे अपनी औलादों के बारे में कह सकते हैं कि वो बिगड़ गए, वो खराब हो गए, वो दुनियादार हो गए, ये हो गए? आपने उनको क्या दिया? माफ कीजिए मुझे, अपनी यंग नस्ल को बचा ले। वो माएं थी, नेक माओं का मिसाली किरदार था, दूध के साथ बच्चों को मुजाहिदीन की मोहब्बत देती थी, इस्लाम की तालीमात देती थी, बेवजू दूध नहीं पिलाती थी माएं, लोरियां देती थी तो मुजाहिदीन की देती थी। बाप रिस्क लाते थे, तो 1 दिरहम भी उसके अंदर अगर मुश्तबे कमाई का हो जाए यानी डाउटफुल, तो बच्चे को नहीं खिलाते थे। हराम तो बड़ी दूर की बात है। तो आज बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? आज कहते क्या करें, सूद के बगैर काम ही नहीं होते, इंटरेस्ट के बगैर तो पढ़ाई नहीं हो सकती, ये स्टडी लोन तो लेना ही पड़ेगा, और ये तो लेना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, ये तो वो होगा। तो मुझे बताइए कि आज के बच्चे ज्यादा बेचारे हैं या हम बेचारे हैं? अब सवाल ये है कि जब बच्चे को आपने दिया ही नहीं वो, तो लेने के उम्मीदवार कैसे? देखिए मिसालों से बात मुझे समझानी आसान लगती है, अल्लाह दिल में डाल दे अगर। तो पकाते हुए आपने चीनी डाली कोई नहीं, तो जब खाएंगे तो वो स्वीट डिश होगी या फीकी डिश होगी? नमक डाला ही कोई नहीं, तो नमक आएगा कहाँ से? और सो ऑन, इन चीज़ों को देख लीजिए आप। बस जो देंगे वही निकलेगा। माएँ तकवा देती थी, आज देंगी वही होगा। सेम तरीका आज भी औलाद के पैदा होने का, सेम तरीका डिलीवरी का, सेम तरीका बच्चे के दूध पीने का, क्यामत तक ऐसे ही रहेगा। मुसलमान माँ का बच्चा और नॉन मुस्लिम माँ का बच्चा एक ही तरह का बिहेव करता है, सारे बच्चे रोते हैं, सारों का ये हाल है। लेकिन हमारा मामला क्या है? हम चाहते हैं कि हम तो अपनी दुनिया के पीछे भागें और बच्चे आखिरत के पीछे भागें। हम दुनिया परस्त हों और हमारे बच्चे दीन परस्त हों, आखिरत परस्त हों। हम तो नफ्स परस्त हों और वो अल्लाह परस्त हो, ये नहीं होगा। आज की यूथ मजलूम है, कहने दीजिए। ये मत कहिए कि हमें बच्चे अच्छे नहीं मिले। आज के माँ बाप को ये कहने का किसी हद तक हक है कि उनको माँ बाप अच्छे नहीं मिले। हजरत उमर के पास एक शख्स ने आकर कहा था कि मेरा जवान बच्चा है, ना फरमान है, जरा इसको समझाइए। इससे पहले कि हजरत उमर उसको कुछ कहते, वो बच्चा जो जवान था, यंग लड़का, कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि आप मुझे कुछ कहें, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। और वो ये कि बेटा होने के नाते मेरे क्या हकूक हैं बाप पे, क्योंकि हम हमेशा माँ बाप के हकूक बताते हैं ना। तो हजरत उमर ने कहा कि तेरा हक ये था कि तुझे एक अच्छी माँ देता, तेरा अच्छा नाम रखता, तेरी अच्छी तरबियत करता। उसने कहा फिर मेरे बाप ने मेरे ये तीनों हक नहीं दिए। इसने एक मजूसी औरत से शादी की, फायर वर्शिपर, आग की पुजारी औरत, इसे मेरा नाम जवाहरलाल रखा, ऐसी बेकार। और मेरी माँ चूंकि इस्लाम पे नहीं थी, मेरी तरबियत नहीं अच्छी की। तो हजरत उमर ने उस बुजुर्ग को कहा कि इसको ले जा, कसूर इसका नहीं तेरा। कल क्यामत के दिन एक उंगली उधर डाली तो ये 3-4 उंगलियां अपनी तरफ आएंगी। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। आगे चलते हैं। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फ़ुल्क फ़िल बहर, तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियाँ चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। वो तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान है, और समंदरों में मुसीबत पहुँचते ही जिन्हें तुम पुकारते थे सब गुम हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है। फिर वो तुम्हें जब खुशकी की तरफ बचा लाता है तो तुम मुँह फेर लेते हो, और इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। यानी जब मुश्किल टल जाती है तो अल्लाह ताला से ऐसे अलग हो जाता है जैसे कभी जानता ही नहीं था। अफामिन तुम्हें यकसिफ बिकुम जानिबल बर, तो क्या तुम इससे बेखौफ हो गए हो कि तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे, या तुम पर पत्थरों की आंधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए किसी निगहबान को ना पा सको। दोबारा सवाल है। अमामिन तुम्हें युईदकुम फीही तारतन उखरा, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह ताला फिर तुम्हें दोबारा दरिया के सफर में ले आए और तुम पर तेजो तुन हवाओं के झोंके भेज दे, और तुम्हारे माजी वाले कुफर के बायस तुम्हें डबो दे? अगर ऐसा हुआ तो सुम्मा ला तजिदु लकुम अलैना बिही तबीया, फिर तुम अपने लिए हम पर इसका दावा यानी पीछा करने वाला किसी को ना पाओगे। आयत 70। वलकत करमना बनी आदम, यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी, महसूस करिए इस इज्जत को, और इन्हें खुशकी और तरी की सवारियां दी, और इन्हें पाकीजा चीजों की रोजियां दी, और अपनी बहुत सी मखलूक पर इन्हें फजीलत अता फरमाई। अब आगे क्या होगा? यौम नदउ कुल्ल अनासिम बि इमामिहिम, जिस दिन हम हर जमात को इसके पेशवा समेत बुलाएंगे। फिर जिनका भी आमाल नामा दाएं हाथ में दे दिया गया हो, वो तो शौक से अपना नामे आमाल पढ़ने लगेंगे, इमेजिन कीजिए, और धागे के बराबर यानी जर्रा बराबर भी जुल्म ना किए जाएंगे। और हकीकत क्या है? फमन का नफी हाजी ही आमा फहुव फिल आखिरती आमा वादल सबीला। और जो कोई इस जहान में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा और रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम।